जब से दिलवाएगी तुमको जन्नत नमाज नमाज।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊज बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह
व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी
अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम सब एक बार फिर आपको अपने प्रोग्राम आए नमाज सीखे में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है?
आए
नमाज सीखें। अपने इस प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज से मुतालिक बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हम सीखा करते हैं। नमाज पढ़ने के फजाइल क्या हैं, नमाज ना पढ़ने की वईदे क्या हैं, नमाज ना पढ़ने वाले से अल्लाह ताला किस कदर नाराज़ होता है, और नमाज पढ़ने से मुतालिक अहम तरीन बातें, नमाज का तरीका और रुकू सुजूद का तरीका, सजदा साहब से मुतालिक मसाइल, बहुत सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह हम सीखने की कोशिश करते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें जो नमाज से मुतालिक है आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले कि अपने मौजू पर बात करें, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत। अल्लाह के आखिरी नबी नबी हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ कुछ प्यारे प्यारे बच्चे भी मौजूद हैं और गुफरान रजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो गुफरान रजा से मैं कहूंगा कि एक माँ से मुतालिक कोई शेर वगैरह हमें सुनाए, इसके बाद इंशाल्लाह आज के मौजू को कंटिन्यू करते हैं।
चलो नमाज पढ़े, चलो नमाज पढ़े, चलो नमाज पढ़े, चलो नमाज पढ़े, चलो नमाज पढ़े। मैं क्या बताऊँ तुमको हकीकत नमाज की, मैं क्या बताऊँ तुमको हकीकत नमाज की, मैं क्या बताऊँ तुमको हकीकत नमाज की, हकीकत नमाज की, हकीकत नमाज की। अल्लाह की रजा है मोहब्बत नमाज की, अल्लाह की रजा है मोहब्बत नमाज की।
प्यारे बच्चों माशाल्लाह, ये देखा आपने, चलो नमाज पढ़ो। तो प्यारे बच्चों, हमने यही सदा लगानी है, अजान हो जाए ना, क्या सदा लगाएंगे? चलो नमाज पढ़ें, चलो नमाज पढ़ें, चलो नमाज पढ़ें। खुद भी नमाज पढ़ें और दूसरों को भी नमाज पढ़ने की तरगीब दिलानी है। प्यारे प्यारे बच्चों, 700 से ज़ायद मकामात पर कुरान करीम में नमाज का जिक्र किया गया है, और नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत ही अहम तरीन इबादत है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाए, कुफर और इस्लाम के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। तो नमाज में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की आँखों की ठंडक बयान किया गया है। हमारे बुज़ुर्गों के बारे में आता है कि वो नमाज से इतना प्यार करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि वो पूरी पूरी रात जाकर अल्लाह की इबादत में, नमाज में गुजार दिया करते थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत इतने ज़ौक के साथ, इतने शौक के साथ किया करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के मुबारक पाँव में वर्म आ जाता था। लेकिन आज मुसलमान नमाज में बहुत सुस्ती करते हैं। देखा यह जाता है कि बच्चे अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से अपने होमवर्क करने में, अपने खेल कूद में इतने बिजी होते हैं कि उन्हें नमाज पढ़ने का ख्याल ही नहीं रहता है, या फिर सुस्ती करते हैं और नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए और नमाज में सुस्ती से बचना चाहिए।
बच्चों को फजर की नमाज में उठने में प्रॉब्लम होती है तो हम लोग क्या करें?
हम लोग क्या करें, भाई करना ये चाहिए कि जल्दी सो जाना चाहिए, अगर जल्दी उठना है तो जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना है तो जल्दी सोना चाहिए, ये इसका हल है। आप जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, है ना भाई। गुफरान नजर, आप जल्दी सोते हैं देर से सोते हैं?
जल्दी
जल्दी सोते हैं, इशा से पहले इशा के बाद?
इशा के बाद।
इशा के बाद सो जाते हैं, और उठते कब हैं जरा बच्चों को बताएं?
6 बजे।
तो 6 बजे उठने के बाद फिर क्या करते हैं?
नमाज पढ़ते।
कौन सी नमाज पढ़ते हैं? जोहर की?
फजर।
फजर की नमाज पढ़ते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो देखें फायदा क्या हुआ, जल्दी सोए तो फिर जल्दी आंख भी खुल जाती है ना भाई, जल्दी सोते हैं तो जल्दी आंख भी खुल जाती है, सुबह उठने में प्रॉब्लम तो नहीं होती है ना। तो प्यारे बच्चों बहुत अच्छा ये हल है इसका, कि अगर आपको फजर की नमाज में उठना है ना तो क्या करना पड़ेगा आकिब, आपको जल्दी सोना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे इंशाल्लाह ताला, तो अपनी आदत बना लेंगे कि जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठ भी पाएंगे, ठीक है, ये अपनी आदत बना लेनी चाहिए।
मेरा सवाल ये है कि कुछ बच्चे जल्दी सो जाते हैं तो फिर भी नहीं जल्दी उठ पाते।
हाँ देखें अब इन बच्चों का क्या करें, इनका तो इनको तो अगर जो है वो पूरा दिन और रात सोने के लिए दे दिया जाए तो ये सोते ही रहेंगे, ठीक है भाई। इनके कहें ठीक है दिन में सो जाए तो अब ये रात को उठेंगे, फिर कहें रात को सो जाए तो फिर ये सुबह उठेंगे, है भाई। तो कुछ बच्चों की आदत होती है ज्यादा सोने की, उनको मजा आता है, शौक होता है भाई सोना है, क्या करना है भाई खाना है, अब क्या करना है सोना है, उठने के बाद पूछ रहे क्या करना है भाई खाना है, खाना खाने के बाद पूछ रहे क्या करना है, कह रहे सोना है। उनकी जिंदगी का एक ही मकसद नजर आता है, खाना और सोना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, जिंदगी में और भी तो कुछ काम करने हैं, इसीलिए अपनी आदत बना लें कि खाना और सोना तो ठीक है अपनी जगह पर होना चाहिए। जितना टाइम खाने का है उतना टाइम खाने को दें, जितना टाइम सोने का है उतना टाइम सोने को दें। लेकिन अब देखें ना, आपने सवाल पूछा कि कुछ बच्चे जो हैं वो रात को जल्दी भी सो जाएं फिर भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, ऐसा होता है। अब वही बच्चे होते हैं ना जो फजर के लिए नहीं उठ पाते हैं लेकिन स्कूल के लिए उठ जाते हैं, स्कूल के लिए उठ जाते हैं भाई, फजर के लिए आंख नहीं खुल रही, स्कूल के लिए आंख खुल रही है, क्यों? अम्मी उठा देती है, अबू उठा देते हैं, यार खुद टेंशन होती है भाई स्कूल में लेट होंगे तो स्कूल क्या हो जाएगा, गेट बंद हो जाएगा, इसीलिए टेंशन होती है कि यार ऐसा नहीं कि स्कूल का दरवाजा बंद हो जाए भाई, अगर नमाज नहीं पढ़ी और जन्नत का दरवाजा बंद हो गया तो क्या करेंगे, जन्नत का दरवाजा बंद हो गया तो क्या करेंगे भाई। आपने सुना है ना नमाज क्या है, नमाज क्या है, हाँ नमाज जन्नत की, नमाज जन्नत की चाबी है। और आपने ये भी सुना होगा जो वो मौजिन फजर की अजान में क्या कहते हैं, जो और अजानों में नहीं कहा जाता, फजर की अजान में एक कलिमा जो है वो एक्स्ट्रा कहा जाता है, वो कौन बताएंगे? चारों अजानों में नहीं होता, एक अजान में वो जुमला कहा जाता है जी। किस किस को मालूम है? एक हाथ उठा हुआ है, दो और नहीं मालूम।
अस्सलातु खैरु मिनन नौम।
हाँ अस्सलातु खैरु मिनन नौम, सब मिलकर बोलेंगे
अस्सलातु खैरु मिनन नौम।
क्या इसका मतलब क्या है भाई, तर्जमा भी बता दे हमारे बच्चों को।
नमाज के लिए उठो,
नमाज
के लिए उठो,
नमाज के लिए उठो, ये कह रहे हैं भाई।
नमाज नींद से बेहतर है,
नमाज नींद से बेहतर है, सब मिलकर बोलेंगे
नमाज नींद से बेहतर है,
सब मिलकर बोलेंगे
नमाज नींद से बेहतर है,
नमाज नींद से बेहतर है,
नमाज नींद से बेहतर है।
जी हाँ, तो ये ज़हन में रखेंगे ना भाई, मौज़िन इसीलिए कह रहा होता है, मौज़िन जब अजान कहते हैं ना, मौज़िन किसे कहते हैं?
जो अजान,
मौज़िन किसे कहते हैं?
जो अजान दे,
जो अजान दे, मौज़िन का माना होता है अजान देने वाला। मौज़िन का क्या मतलब होता है?
अजान देने वाला।
हाँ मौज़िन का मतलब होता है अजान देने वाला। तो जो अजान देने वाला है ना वो फजर की नमाज में ही क्यों कह रहे होते हैं और अजानों में नहीं कहते? इसलिए कि लोग उस वक्त क्या कर रहे होते हैं?
सो रहे होते
हैं, और वो नींद की वजह से नमाज को ना तर्क कर दें, नमाज को ना छोड़ दें, इसीलिए उनको समझाया जा रहा होता है कि भाई नमाज नींद से बेहतर है, इसीलिए नींद को छोड़ो नमाज को पढ़ो, नींद को छोड़ो
नमाज को
पढ़ो, ठीक है ना। नींद तो बाद में भी होती रहेगी लेकिन फजर की नमाज फिर नहीं आ सकेगी, क्योंकि देखें अभी सूरज निकला हुआ है ना, सूरज नजर आ रहा है आप लोगों को? ऊपर देखें जरा, सूरज नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, अब तो हाँ कह रहे, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है सूरज
पीछे।
हाँ पीछे है ना भाई, यहाँ पर तो लाइट है, सूरज की रोशनी है, धूप है, सूरज नजर नहीं आ रहा। जब कोई सूरज निकलता है ना, हदीसे पाक का मफहूम है, रिवायत का मफहूम है, जब सूरज निकलता है ना तो वो कहता है कि जो काम करना है आज के दिन कर लो। बहुत अहम बात है ये, वो सूरज कहता है जो काम करना है आज कर लो, आज के बाद मैं दोबारा लौट कर नहीं आऊंगा, यानी अगले दिन दूसरा दिन होगा। ये जो आज का दिन है ना, ये दिन दोबारा से लौट कर कभी भी नहीं आएगा कयामत तक, ये पास्ट बन जाएगा ना, माजी बन जाएगा, पास्ट बन जाएगा। इसके बाद माजी दोबारा तो नहीं आता ना भाई, माजी दोबारा नहीं आ, पिछला जो जुमा गुजर गया वो आइंदा नहीं आ सकता, आज जो जुमा गुजर जाएगा वो नेक्स्ट टाइम कभी भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो पास्ट कभी भी फ्यूचर नहीं बनता है, तो वो जो जमाना चला गया खत्म, तो जो नेक काम कर सकते हैं इसमें कर लें। तो इसीलिए जो नमाज पढ़ सकते हैं इस टाइम में वो नमाज पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है ना, वरना वो सूरज कहता है कि आज के बाद मैं कभी भी लौट कर नहीं आऊं, यानी उस दिन का जो सूरज है अब दोबारा हमें नहीं मिलेगा। तो ये जो सूरज है ना, ये डलते डलते गुरूब हो जाता है, फिर इसके बाद रात आ जाती है, आज का दिन गुजर गया। जिसने नमाज पढ़ ली उसने अल्लाह को राजी कर लिया, और जिसने नमाज को छोड़ दिया अल्लाह पाक उससे नाराज हो जाता है। तो अस्सलातु खैरु मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। तो फजर की नमाज में आंख ना भी खुले ना कलीम रजा, फिर भी हमें क्या करना चाहिए, अपनी आदत बनानी चाहिए, अपने आप को अल्लाह से डराना चाहिए, ऐसा ना हो कि मैं फजर की नमाज ना पढूं और अल्लाह मुझसे नाराज हो जाए। ये हमें अपना जहन बना लेना चाहिए और नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, क्योंकि जो शख्स फजर की नमाज और इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता है ना, अल्लाह ताला उसे पूरी रात जाग कर नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। तो ये है, तो नमाज की पाबंदी जरूरी है और बाजमात पढ़ें। जैसे आप लोगों की जो एज है ना, वो ऐसी है कि आप लोग बाजमात नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा सकते, इसीलिए कोशिश फरमाया करें कि मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ें। नमाज को तर्क नहीं करना चाहिए, और ये बात भी ज़रूरी है कि नमाज पढ़नी भी है पाबंदी से और सही पढ़नी है, ठीक है। नमाज पाबंदी से पढ़नी है, बोले ज़रा, और सही पढ़नी है,
और सही पढ़नी
है, गलती नहीं करनी है,
गलती नहीं करनी।
जी हाँ, ये जो आए नमाज सीखे प्रोग्राम है ना हमारे, इसका मकसद यही, हम नमाज के पाबंद बन जाएं, है ना, और सही तरीके से नमाज पढ़। अगर नमाज में गलती करेंगे ना तो हम तो ये समझ रहे होंगे कि हम नमाज पढ़ लें, बट नुकसान ये होगा कि हमारी नमाज कबूल ही नहीं हो रही, हमने नमाज में कोई फर्ज छोड़ दिया, हमने वजू सही नहीं किया, तहारत सही नहीं की, तो अब हमारा तो, हमारी तो नमाज ही सही नहीं हो सकेगी। जब नमाज सही नहीं होगी, हम नमाज पढ़ भी रहे लेकिन नमाज सही नहीं पढ़ रहे, तो क्या नुकसान होगा, हमारी नमाज कबूल नहीं होगी। नमाज किस तरह से पढ़नी है, रुकू सुजूद कैसे करने है, हमने कई मरतबा आपको समझाने की कोशिश की है। आज हम आपके सामने नमाज का तरीका बयान करेंगे कि नमाज पूरी पढ़नी कैसे है। सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह फातिहा कब पढ़नी है, सना कब पढ़नी है, और किरात कब करनी है, रुकू और सुजूद कब करना है, इंशाल्लाह इसका हम पूरा प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे, ताकि हमें याद भी हो जाए, और जब हम देखेंगे ना तो देखने से हमें और अच्छा, अच्छे तरीके से, हमें और अच्छे तरीके से वो चीज़ याद हो जाएगी और हमारी गलतियाँ इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो नमाज का तरीका हम सिखाने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि सबसे पहले जब आप नमाज पढ़ते हैं तो तकबीर कहते हुए आप अपने हाथों को क्या करते हैं, बांध लेते हैं। हाथों को बांधने के बाद क्या पढ़ते हैं, सना पढ़ेंगे। हाथों को बांधने के बाद सना पढ़ते हैं, वो सना क्या होती है इंशाल्लाह हम आपको यहाँ एक बच्चे को लाकर खड़ा करेंगे और सना पढ़कर वो आपको सुनाएंगे, ताकि आपको सीखने को मिले कि सना किस तरह पढ़। नंबर टू, सना पढ़ने के बाद क्या पढ़ना है, सूरतुल फातिहा पढ़नी है, ठीक है। सूरतुल फातिहा के बाद एक सूरत साथ में आपने मिलानी, ठीक है, वो कैसे मिलानी है वो भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। बीच में आऊज़ु बिल्लाह कहाँ पढ़ना है, बिस्मिल्लाह कहाँ पढ़ना है, दोनों कहाँ पर पढ़ना है, एक चीज को कहाँ पर पढ़ना है, इंशाल्लाह ये भी सीखेंगे। आमीन कहाँ कहना है, कहाँ नहीं कहना, कितनी आवाज से कहना है, इसको भी सीखेंगे। तो रुकू में और सजदे में क्या तस्बीहात पढ़नी है ये इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि आपने रुकू में क्या पढ़ना है, सजदे में क्या पढ़ना है, उनकी तस्बीहात क्या है, फिर अत्ताहियात, फिर दुरूद इब्राहिमी। इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें हम आपके सामने बयान करेंगे और एक बच्चा प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएगा और पूरा पढ़ के सुनाएंगे कि किस तरीके से आपने पढ़ना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं और गुफरान रजा इंशाल्लाह ताला आपको नमाज पढ़ के दिखाएंगे, नमाज का प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। और बिलखसूस हमने जो सीखना है इसमें वो ये सीखना है, वैसे रुकू सुजूद का तरीका तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन यहाँ हमने ये सीखना है कि कहाँ पर क्या पढ़ना है, नमाज में कौन सा रुकन में हमने क्या पढ़ना है, इसको इंशाल्लाह ताला हम आज सीखने की कोशिश करेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखें प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने तकबीर कहनी होती है। आपने भी तवज्जो के साथ प्यारे बच्चों जो मौजूद है देखना है, और जो हमारे बच्चे स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं, आपने भी तवज्जो के साथ इस तरीके को सीखने की कोशिश करनी है और कोशिश करें इसी के मुताबिक आप नमाज पढ़ें। देखें होता ये कि जब हम मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, हम दूसरों को देख देख कर नमाज सीख रहे होते हैं। अगर वो भी गलती कर रहा है तो हम भी गलती करना शुरू कर देते हैं, वो जिस तरह से तकबीर कह रहे हैं हम भी तकबीर कह रहे होते हैं तो हम भी गलती करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इस तरह नहीं करना है, दूसरों को गलती करता देखेंगे तो खुद भी गलती करेंगे, और उनको अगर गलती करता देख कर सीखेंगे तो खुद भी गलती कर सकते हैं। इसीलिए कोशिश यही करनी है कि दुरुस्त तरीका सीखें, जो तरीका सही है उसी को सीखना है, ताकि हमसे मिस्टेक ना हो जाए, गलती ना हो जाए। होता ये हमने किसी का गलत तरीका देखकर खुद गलत नमाज सीखी और हमें देखकर दूसरा गलत तरीका सीख रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं करना है प्यारे बच्चों। इसीलिए आपके सामने ये तरीका बयान किया जा रहा है और आपने इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ देखना है। तो गुफरान रजा सबसे पहले तकबीर कहेंगे, ठीक है। तकबीर कहते हुए हाथों को किस तरह से उठाना है ये आप बताएंगे, और तकबीर में जो अल्फाज कहने अल्लाहु अकबर, कुछ बच्चे इसमें भी गलती कर रहे होते हैं तो उसको भी आपने सही कह के जो है वो बच्चों को सिखाना है, ठीक है। अब ये नमाज की नियत नहीं करेंगे, लेकिन नमाज का पूरा अमली तरीका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। जी गुफरान भाई, नहीं एक मिनट आप रोकें, अच्छा आप हाथों को उठाएं, रोकें, अब रोकें, अब देखें अपनी ये हथेलियां है ना, ये कर दें आसमान किबले की तरफ, राइट, उंगलियां कर दें सीधी बिल्कुल, उसको भी ऐसे ही करें, दिखाएं, ठीक है। अब उंगलियां थोड़ी सी खोलें, ये चीज, और ये भी उंगलियां थोड़ी सी खोलनी है आपने, राइट। तो प्यारे बच्चों ये देखें, इनका जो अंगूठा है इनके कान की लोह पे टच कर रहा है, ये अंदाज होना चाहिए, और आपकी जो हथेलियां हैं वो किबले की तरफ होनी चाहिए, ये अंदाज होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। और अब यहां से आपने तकबीर कहनी होती है। आप पहले तो सीधा जो है अपने हाथों को लेकर आएंगे ऐसे, कुछ बच्चे यूं करके ला रहे होते हैं, ऊपर से उड़ा कर लेकर आ रहे होते हैं, सर पे बिठाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। बल्कि यूं डायरेक्ट ऐसे हाथों को उठाएं और अपने हथेलियां जो हैं वो किबले की जानिब रखें, उंगलियां नॉर्मल हालत पर रखें, और फिर अल्लाह अकबर कहते हुए आपने अपने हाथों को बांधना होगा। गुफरान रजा इसी तरीके से कहेंगे, आपने इनकी तकबीर को सुनना है कि तकबीर ये किस तरह से कहते हैं। जी गुफरान भाई,
अल्लाह अकबर,
देखें आप हाथों को यूं लेकर आए, देखें मुझे, देखें मुझे, देखें आप, अल्लाह अकबर ये नहीं करना, ठीक है, अल्लाह अकबर, अब मुझे देखिएगा जरा, अल्लाह अकबर ऐसे, ठीक है, और हाथों को नाफ के नीचे बांधेंगे, ठीक है। चलें एक मिनट, दोबारा वही पोजीशन आएगी, डायरेक्शन हाथ की बिले की जानिब, ठीक है, हथेलियाँ की बिले की जानिब, और अल्लाह को कहकर हाथों को बांधना है, जी
अल्लाह,
ये चीज। अब तकबीर जो इन्होंने कही है ना वो जरा दोबारा सुने, जोर से बोले तकबीर,
अल्लाह
जी, दोबारा बोले,
अल्लाह
जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं वो भी बोलेंगे, जी
अल्लाह,
दोबारा बोले, दोबारा बोले,
अल्लाह अकबर।
देखें ये अल्लाह अकबर गलत है, ठीक है ना, ये बच्चों नोट कर रहे हैं, ये गुफरान भाई, अल्लाह अकबर नहीं है, अल्लाह अकबर, दोबारा बोले,
अल्लाह अकबर।
हाँ देखें इसमें कुछ मिस्टेक्स होती है ना प्यारे बच्चों, वो ये होती है, अल्लाह अकबर ये गलत, اللہ اکبر، یہ بھی غلط. ٹھیک ہے، یہ جو ہم سن سن کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں اس کا پورا صحیح پروناؤنس نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے اس کو پروناؤنس کس طریقے سے کرنا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا تلفظ ہمیں درست طریقے سے آنا چاہیے. غفران بھائی کیا تھا؟
اللہ اکبر.
اللہ اکبر کہنا ہے. آپ نے اپنے ہاتھ باندھ لیے ہیں، آپ کی نظر کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ پر. کہاں ہوگی؟
سجدے کی جگہ.
نظر ان کی سجدے کی جگہ پر ہوگی. اب آپ کیا پڑھیں گے؟
سنا.
کیا پڑھیں گے بھائی؟
سنا.
بھائی تکبیر کہہ لی، ہاتھ باندھ لیے، اب سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ یہ آپ کو سنا پڑھ کر سنائیں گے. ٹھیک ہے نا پیارے بچوں، یہ آپ کو سنا پڑھ کے سنائیں گے. آپ نے بہت توجہ کے ساتھ اس کو سننا بھی ہے، اور اسی کے مطابق آپ نے اپنا تلفظ بھی ادا کرنا ہے. کیونکہ لکھی تو ہوتی ہے کتابوں میں، بٹ ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھ نہیں رہے ہوتے، ہمیں اس کا تلفظ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا تلفظ کیا ہے. تو اسی لیے انشاءاللہ آپ کو یہ پڑھ کے بھی دکھائیں گے، اس کا تلفظ کر کے بھی دکھائیں گے. جی.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک.
ٹھیک ہے، یہ ثنا پڑھنی ہے آپ نے سب سے پہلے نماز میں. اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟
اعوذ باللہ.
ہاں یہ چیز ہے پیارے بچوں، کہ ثنا کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟
اعوذ باللہ.
جی ہاں، آپ نے ثنا کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد کوئی بھی ایک سورت پڑھنی ہوتی. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کے سامنے سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، اور پھر کوئی سورت پڑھیں گے. جی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین.
یہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور ثنا کے بعد آپ نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں، اب بسم اللہ پڑھیں گے، اور بسم اللہ کے بعد کوئی بھی سورت ملانی ہے. ٹھیک ہے، چلیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
ٹھیک ہے، اب پیارے بچوں یہ ایک ساتھ پورا آپ کو پڑھ کے سنائیں گے. آپ نے تکبیر بھی کہنی ہے، ثنا، سورہ فاتحہ اور سورہ ساتھ میں ملانی ہے. میں نے بیچ میں نہیں بولنا ہے، آپ نے پورا تکبیر کے ساتھ بچوں کو کر کے دکھانا ہے کہ کس طرح سے وہ پڑھیں گے. رائٹ، چلیں. ٹھیک ہے.
اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
تو پیارے بچوں یہ ہے تلاوت کا طریقہ، کہ آپ نے قیام کی حالت میں کیا کیا پڑھنا ہے. تو پہلا فرض تھا تکبیر تحریمہ کیسے کہنی ہے، آپ نے دیکھ لیا. دوسرا فرض قیام کیسے کرنا ہے، آپ نے دیکھ لیا. تیسرا فرض قرات وہ کیسے کرنی ہے، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. ثنا پڑھنا، تعوذ و تسمیہ پڑھنا سنت ہے، اس کا بھی آپ نے طریقہ دیکھا. اب ہم جائیں گے رکوع میں، اور رکوع میں آپ کے ہاتھ آپ کے گھٹنوں پر ہوں گے، انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں گی، اور آپ کی کمر بالکل سیدھی ہوگی، اور نظر آپ کی دونوں پاؤں کے درمیان میں ہوگی. اور اس کے بعد آپ نے تین بار رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے. رکوع کی تسبیح معلوم ہے نا آپ کو، رکوع کی تسبیح تین بار پڑھنی ہے، اور رکوع کی تسبیح ہے क्या है?
सुभान
रब्बी अल अज़ीम। तीन मरतबा आपने रुकू की तस्बीह पढ़नी है सुभान रब्बी अल अज़ीम, और इसके बाद हम कौमे के लिए खड़े होंगे। ये रुकू जो है नमाज का चौथा फर्ज। कौन सा फर्ज है भाई?
चौथा।
नमाज का कौन सा फर्ज है?
चौथा
फर्ज है, जी हाँ। और तीन बार आप रुकू में सुभान रब्बी अल अज़ीम कहते हैं, ये सुन्नत है। तो अभी आप गुफरान भाई आपको जो है इंशाल्लाह रुकू करके दिखाएंगे। जी गुफरान भाई।
अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बी अल अज़ीम, सुभान रब्बी अल अज़ीम, सुभान रब्बी अल अज़ीम।
अब देखें इनकी कमर जो है बिल्कुल सीधी है, इनकी कमर बिल्कुल सीधी होगी और गर्दन बिल्कुल झुकी हुई नहीं होगी, बहुत उठी हुई भी नहीं होगी, नॉर्मल होगी। निगाहें दोनों पाओं के दरमियान में होंगी और तीन मरतबा रुकू की तस्बीह कहनी है। इनके जो हाथ हैं ये बिल्कुल सीधे होंगे, पाँव भी सीधे होंगे और कमर भी बिल्कुल सीधी होगी। अब ये समी अल्लाह लिमन हमीदा कहते हुए खड़े होंगे। जी
समी अल्लाह लिमन हमीदा।
अब समी अल्लाह लिमन हमीदा कहना है और इसके साथ क्या कहेंगे?
रब्बना वलकल हम्द।
दोबारा कहेंगे समी अल्लाह लिमन हमीदा, जोर से कहें
समी अल्लाह लिमन हमीदा।
जी हाँ, आखिर में हा भी है, हमीदा नहीं कहेंगे, समी अल्लाह लिमन हमीदा, रब्बना वलकल हम्द, इस तरह से कहना है आपने समी अल्लाह लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द। और आपकी नजर आपके सीने पर हो, ठीक है? ये कौमा कहलाता है, कौमा करना वाजिब, यानी रुकू से उठना और अपनी कमर सीधी करना ये वाजिब है।
अच्छा, कुछ कुछ बच्चे होते हैं रुकू में से उठ के कमर सीधी नहीं करते, डायरेक्ट सजदे में चले जाते हैं, इनकी नमाज होती है?
देखें अब ये तरीका सही नहीं है ना, कि कुछ बच्चे रुकू थोड़ा सा सर उठाया और डायरेक्ट सजदे में, देखा बच्चों को ऐसे थोड़ा सा सर उठाया डायरेक्ट सजदे में, तो ये तरीका तो सही नहीं है, ये तो वाजिब तर्क हो जाएगा। यानी रुकू में जिसे अभी आपके सामने कमर सीधी करके खड़े हैं ना, ये तरीका सही है, कमर सीधी करें और उसके बाद सजदे में जाएं, ये तरीका तो सही है। लेकिन रुकू से थोड़ा सा सर उठा के सजदे में चले जाते हैं, ये तरीका सही नहीं है, ठीक है? ज़रा वो तरीका करके बताएं ना गुफरान, जो ये गलतियाँ कर रहे होते हैं, जैसे हमारे आकिब हमें बता रहे हैं कि वो थोड़ा सा सर उठाए फिर सजदे में चले गए डायरेक्ट, वो कैसे होता है ज़रा बताएं। अब प्यारे बच्चों ये आपको गलत तरीका बता रहे हैं, कि जो तरीका गलत है ना वो गलत तरीका बता रहे हैं कि बच्चे किस तरह मिस्टेक करते हैं। जी ये गलत तरीका, ठीक है, उठें। अच्छा अब इनको सही तरीका करके बताएं कि रुकू के बाद कमर सीधी करनी है और उसके बाद पूरा सजदे में जाना है, ठीक है? आपने चूंकि सजदे में जाना है ना, खड़े हो, आपने चूंकि सजदे में जाना है, आप चश्मा उतार दें, क्योंकि चश्मा करते वक्त प्रॉब्लम ये होती है पहन के आपका सजदा सही नहीं हो सकेगा ना, अगर चश्मा पहन कर सजदा करेंगे तो सजदा सही नहीं हो सकेगा, इसीलिए इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है। अब आप इनको सही तरीका करके बताएं, क्योंकि आपने गलत तरीका भी करके बताया है, अब ये सही तरीका है, ठीक है? ये देखिए कमर बिल्कुल स्ट्रेट, अब जाए सजदे में, ये तरीका। जी तो ये तरीका सही था प्यारे प्यारे बच्चों, इन्होंने जो है रुकू किया और रुकू के बाद कौमा किया समी अल्लाह लिमन हमीदा, कमर सीधी की और अब ये सजदे की तरफ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आए नमाज सीखे प्रोग्राम में आज का टॉपिक, कि हमने आपके सामने नमाज के कुछ फजाइल भी बयान किए हैं, नमाज की कुछ अहमियत भी बयान की है और नमाज का जो प्रैक्टिकल तरीका है उसमें क्या क्या असकार होने चाहिए वो हमने आपके सामने बयान किए हैं। प्यारे बच्चों अल्लाह पाक हमें दुरुस्त तरीके से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और नमाज में होने वाली गलतियों से बचने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
से दिलवाएगी तुमको जन्नत नमाज।